लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है
स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित प्रेरितिक आवास की लाइब्रेरी से संत पापा फ्रांसिस ने लाइव प्रसारण के माध्यम से स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया। स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. Il brano del Vangelo ci mostra gli apostoli che si radunano in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Atti priye bhaiyo em behno suprabhat. Aaj Italy evam anya deshon mein prabhu ke swargarohan ka mahaparv manaya jata hai. सुसमाचार पाठ दिखलाता है कि शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास एकत्रित हुए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। वहां पुनर्जीवित प्रभु ने अपने चेलों के साथ अंतिम बार मुलाकात की। संत पापा ने कहा,
Il monte ha una forte carica simbolica.
पर्वत का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। पर्वत पर यीशु ने धन्यताओं की घोषणा की थी। वे पर्वत पर प्रार्थना करने जाते थे। वे वहां भीड़ का स्वागत करते थे और रोगियों को चंगा करते थे। किंतु इस बार पर्वत पर वे ना तो कार्य कर रहे हैं और ना ही शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि पुनर्जीवित प्रभु शिष्यों को अपना काम सौंपते हुए उन्हें उसे जारी रखने एवं सुसमाचार का प्रचार करने का आदेश दे रहे हैं। वे उन्हें सभी लोगों के बीच जाकर मिशन को आगे बढ़ाने हेतु निमंत्रण दे रहे हैं। वे कहते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पौत्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। संत पापा ने कहा, शिष्यों को निम्नलिखित मिशन सौंपे गए, घोषणा करना, बपतिस्मा देना, शिक्षा देना और गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना, यही पुनर्जीवित सुसमाचार है। मुक्ति के संदेश का अर्थ है सबसे बढ़कर साक्ष्य देना। साक्ष्य के बिना इसकी घोषणा नहीं की जा सकती, जिसके लिए हम आज के शिष्य भी हमारे विश्वास द्वारा बुलाए जाते हैं। इस महान कार्य को करते हुए और हमारी दुर्बलताओं को समझते हुए हम अपने आप में अयोग्यता महसूस करते हैं, जैसा कि शिष्यों ने महसूस किया था। किंतु हमें यीशु के शब्दों को याद करते हुए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, जिसको उन्होंने स्वर्गारोहण के पूर्व अपने शिष्यों से कहा था, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रतिज्ञा हमारे बीच यीशु की निरंतर और सांत्वनापूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करता है। संत पापा ने कहा कि इस उपस्थिति को किस तरह से महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उससे उनकी आत्मा द्वारा महसूस किया जा सकता है, जो मनुष्यों के हमराही की तरह इतिहास में चलने के लिए कलीसिया का संचालन करते हैं।
Quello spirito che inviato da Cristo dal Padre opera la remissione dei peccati e santifica tutti coloro che pentiti si aprono con fiducia al suo dono.
पवित्र आत्मा जो क्रिस्त एवं पिता द्वारा भेजे गए हैं पापों की क्षमा के लिए कार्य करते हैं तथा उनके वरदानों पर भरोसा रखकर अपने आप को खोलने और पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करते हैं। इस तरह हमारे साथ अनंत काल तक रहने की प्रतिज्ञा के साथ यीशु इस दुनिया में पुनर्जीवित रूप में अपनी उपस्थिति की शुरुआत करते हैं। यीशु दुनिया में उपस्थित हैं, पर दूसरे रूप में, पुनर्जीवित रूप में जो ईश्वचन संस्कारों और पौत्रात्मा के निरंतर एवं आंतरिक कार्यों से प्रकट होता है। यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हमें बतलाता है कि यद्यपि यीशु पिता के दाहिने महिमा के साथ विराजमान होने के लिए स्वर्ग चले गए, तथापि वे अब भी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। यहीं से हमारी शक्ति, धैर्य और हमारे आनंद की शुरुआत होती है, खासकर यीशु की उपस्थिति जो पौत्रात्मा की शक्ति के द्वारा हमारे बीच है। तब संत पापा ने प्रार्थना की कि धन्य कुंवारी मरियम हमारी यात्रा में अपनी ममता में सुरक्षा द्वारा साथ दें। उनके द्वारा हम दुनिया को जी उठे प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्नेह एवं साहस के साथ साक्ष्य देना सीख सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Ex hoc nunc et usque in seculo.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
स्वर्ग की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न दलों को संबोधित किया और सूचनाएं जारी की। उन्होंने चीन के विश्वासियों के साथ आध्यात्मिक रूप से एक होने का आह्वान किया, जो 24 मई को विशेष भक्ति के साथ धन्य कुंवारी मरियम ख्रिस्तों की सहायिका और चीन की संरक्षिका का पर्व मनाते हैं। शंघाई स्थित शेशान के तीर्थ स्थान पर उनकी बड़ी श्रद्धा की जाती है। हम उस महान देश चीन की काते कलिसिया के चरवाहों एवं विश्वासियों को स्वर्गीय माता के मार्गदर्शन एवं सुरक्षा तले समर्पित करते हैं, ताकि वे विश्वास में मजबूत और भाईचारा में सुदृढ़ रहकर परोपकार, भ्रातृत्व की आशा एवं अच्छे नागरिक के आनंदमय साक्षी एवं प्रोत्साहक बन सकें। चीन के विश्वासियों को संबोधित कर संत पापा ने कहा, चीन के प्यारे कार्तिक भाइयों एवं बहनों, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि विश्वव्यापी कलीसिया, जिसके आप अभिन्न अंग हैं, आपकी आशा को साझा करता है एवं जीवन की चुनौतियों में आपके साथ है। पौत्रात्मा के वरदानों को प्राप्त करने हेतु प्रार्थना में वह आपके साथ है, जिससे कि सुसमाचार की ज्योति एवं सुंदरता विश्वास करने वालों के लिए मुक्ति हेतु ईश्वर की शक्ति आप सभी में चमके। मैं पुनः आप सभी के प्रति अपना हार्दिक स्नेह प्रकट करता हूँ। संत पापा ने सभी चीन वासियों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया तथा कामना की कि माता मरियम हमेशा उनका मार्गदर्शन करें। संत पापा ने उन सभी लोगों की भी याद की जो इस संकट के समय में विभिन्न प्रकार से अपना सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हम कुंवारी मरियम ख्रिस्तों की सहायिका की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के सभी शिष्यों और भली इच्छा रखने वालों को प्रभु को समर्पित करते हैं कि वे इस कठिन समय में विश्व के हर भाग में उत्साह और समर्पण के साथ शांति, राष्ट्रों के बीच वार्ता, गरीबों की सेवा, सृष्टि की देखभाल और शरीर, हृदय एवं आत्मा के हर प्रकार की बीमारी पर मानवता की जीत के लिए कार्य कर रहे हैं। तत्पश्चात संत पापा ने विश्व सामाजिक संचार दिवस की याद की, जो इस साल वर्णन या वृत्तांत विषय को समर्पित है। संत पापा ने कहा, यह अवसर हमें निर्माणात्मक घटनाओं को बतलाने और साक्ष्य देने का प्रोत्साहन दे, जो हमें यह समझने में मदद दे कि हम सभी एक ही बृहद कहानी के हिस्से हैं, और यदि हम सचमुच एक दूसरे को भाई बहन के रूप में मदद करते हैं, तब हम आशा के साथ भविष्य को देख पाएंगे। संत पापा ने कुंवारी मरियम ख्रिस्तों की सहायिका का पर्व, जिसको सलेशन समुदाय में खास रूप से मनाया जाता है, याद करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी तथा अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षण में उनसे मिले सहयोग के लिए डॉन बॉस्को पुरोहितों को विशेष आभार प्रकट किया। उसके बाद उन्होंने अरिचा जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, मुझे आज अरिचा जाना था, उन लोगों के विश्वास एवं समर्पण का समर्थन करने के लिए जो आपकी भूमि कहे जाने वाले स्थान पर प्रदूषण को कम करने हेतु कार्य कर रहे हैं, किंतु मेरी यात्रा स्थगित हो चुकी है। फिर भी मैं वहाँ के धर्माध्यक्ष, पुरोहितों, परिवारों और समस्त धर्म प्रांत के लिए अपना अभिवादन, आशीर्वाद और प्रोत्साहन भेजता हूँ। जितना जल्दी संभव होगा मैं वहाँ जाऊँगा और आप सभी से मुलाकात करूँगा। तब संत पापा ने प्रेरितिक विश्व पत्र लाउदातो सी की 5वीं वर्षगांठ की याद करते हुए पृथ्वी की पुकार और गरीबों की रुदन की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने लौदातो सी सप्ताह की पहल के लिए समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधाम पीठे परिषद को धन्यवाद दिया जिसको पिछला सप्ताह मनाया गया। तब संत पापा ने प्रेरित पत्र लौदातो सी पर विशेष रूप से चिंतन करने हेतु 24 मई 2020 से 24 मई 2021 को लौदातो सी वर्ष घोषित किया। उन्होंने सभी लोगों का आह्वान करते हुए कहा,
Invito tutte le persone di buona volontà ad aderire per prendere cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili.
मैं भली इच्छा रखने वाले सभी लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप हमारे आम घर और हमारे सबसे कमजोर भाई बहनों की देखभाल करने में भाग लें। इस साल के लिए समर्पित प्रार्थना वेबसाइट पर प्रकाशित है। अच्छा होगा कि आप इसके लिए प्रार्थना करें। तब अंत में संत पापा ने अपने लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
साक्षी है बनना इस जग में, शुभ संदेश वाहक बनना हमें, इस नव युग में नूतन जीवन, इस नव युग में नूतन जीवन देना है हजारों को साक्षी है बनना इस जग में, शुभ
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। रविवार 24 मई को स्वर्ग की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने अपने विश्व पत्र लौदातो सी हमारे आम घर की देखभाल की पांचवी वर्षगांठ को याद किया और उन्होंने कहा, दस्तावेज में पृथ्वी के रोने और गरीबों पर ध्यान देने की मांग की गई है। संत पापा ने सभी को लौदातो सी वर्ष 24 मई 2020 से 24 मई 2021 तक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसे समग्र मानव विकास हेतु बने विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। संत पापा ने कहा, मैं दया भाव रखने वाले सभी लोगों को हमारे सामान्य घर और सबसे कमजोर भाइयों एवं बहनों की देखभाल करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। संत पापा ने लौदातो सी वर्ष को समर्पित एक विशेष प्रार्थना की घोषणा की। उन्होंने सभी को इस प्रार्थना का पाठ करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो इस प्रकार है, हे ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तथा उसमें निहित सभी जीवों के सृजनहार, हमारे मन को खोलिए और हमारे हृदय को स्पर्श कीजिए ताकि हम आपकी सृष्टि का हिस्सा बन सकें, आपका उपहार बन सकें। इस कठिन समय में आप जरूरतमंद लोगों, विशेषकर सबसे गरीब और कमजोर लोगों के नजदीक रहें, जैसा कि हम वैश्विक महामारी के परिणामों का सामना कर रहे हैं। रचनात्मक एकजुटता दिखाने में हमारी मदद करें। हमें आम भलाई की तलाश में आवश्यक परिवर्तन को स्वीकार करने का साहस दीजिए। अब पहले से कहीं ज्यादा हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे पर आश्रित महसूस कर सकें। हमें पृथ्वी का रोना और गरीबों की दुहाई सुनने एवं जवाब देने हेतु सक्षम बनाएं। उनके वर्तमान कष्ट अधिक भाईचारे और स्थायी दुनिया की जन्म वेदना हो। सभी ख्रिस्तियों की सहायिका माता मरियम की छत्र छाया तले हम यह दिन प्रार्थना करते हैं, ख्रिस्त हमारी प्रार्थना सुन। इसी दिन ट्वीट प्रेषित कर संदेश में संत पापा ने लिखा, एक अभिन्न परिस्थिति की सृष्टि के साथ सुखद सामंजस्य स्थापित करने में समय लेना, हमारी जीवन शैली और हमारे आदर्शों पर चिंतन करना तथा हमारे चारों ओर एवं हमारे बीच रहने वाले सृष्टिकर्ता पर आत्मसात करना शामिल है। संत पापा फ्रांसिस ने 24 मई को ही विश्व संचार दिवस के अपने संदेश को याद किया, जिसका विषय है कहानी बताना। संत पापा ने कहा कि यह पुनरावृत्ति हमें आशा के साथ भविष्य की ओर देखने वाली कहानियों को बताने में मदद कर सकती है। यह घटना हमें रचनात्मक कहानियों को बताने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम एक ऐसी कहानी का हिस्सा हैं जो खुद से बड़ी है और भविष्य को आशा के साथ आगे देख सकती है, अगर हम वास्तव में एक दूसरे को भाइयों और बहनों के रूप में देखभाल करते हैं। इस अवसर पर संत पापा ने ट्वीट संदेश में लिखा, प्रभु का ज्ञान मुख्य रूप से कहानी के माध्यम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उतरती है। कहानी के द्वारा वे अपने को वर्तमान में उपस्थित करते हैं। जीवन की कहानी के माध्यम से जीवन के ईश्वर हमारे साथ संवाद करते हैं। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाउलो रूफिनी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और विश्व संचार दिवस के लिए संत पापा फ्रांसिस के संदेश को दर्शाया। डॉक्टर रूफिनी कहते हैं कि संदेश की कुंजी हमारे स्वयं के अनुभवों का साझाकरण है, जो हमें मुक्ति की संभावना में एक नई कहानी बनाने की अनुमति देता है। COVID-19 लॉकडाउन के कारण अलगाव और सोशल डिस्टेंस के हमारे हालिया अनुभव ने हमें यह सिखाया है कि ईश्वर हमें आपसी एकता का एक गहन संवाद प्रदान करता है। डॉक्टर रूफिनी कहते हैं, अलगाव के हमारे अनुभव द्वारा हम समन्वय के महत्व को समझ गए हैं। हमारे अनुभवों में एकता को खोजने की क्षमता के बिना न तो ज्ञान है और न ही विवेक। सब कुछ एक एकीकृत कहानी के बिना तथ्यों की सूची कम हो गई है। उन्होंने कहा, महामारी ने हमें एक विकल्प दिया है, खुद को केवल प्रौद्योगिकी को दें या इसे आत्मा को दें। वे कहते हैं कि फेक न्यूज भी प्रचारित किया गया है। सब कुछ निर्भर करता है कि हम कहां अपनी आशा को आधार बनाते हैं। हमारे पास स्वस्थ यथाशक्ति के सद्भाव के साथ महामारी के अस्वस्थ संघ के जवाब देने का अवसर है। महामारी ने हमें संचार के अच्छे रूपों पर स्थापित स्वागत करने वाले समुदायों के निर्माण का भी मौका दिया है। वे कहते हैं कि संचार को एक ऐसे नेटवर्क में फिर से निहित होने की आवश्यकता है जो वैश्विक और स्थानीय, डिजिटल और वास्तविक दोनों हो। संचार एकजुट करने का कार्य करता है, ना कि विभाजन और ना ही खरीदने या बेचने के लिए है। हमें प्रौद्योगिकी को एक उत्कृष्ट आयाम देना चाहिए। और कलीसिया रविवार 24 मई को चीन की कलीसिया के लिए विशेष प्रार्थना दिवस को चिन्हित करती है। इस दिन संत पापा फ्रांसिस ने कैथोलिक कलीसिया की ओर से चीन की कैथोलिक कलीसिया को प्रार्थनामय सामीप्य का आश्वासन दिया। स्वर्ग की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने कहा, चीन के प्यारे कैथोलिक भाइयों और बहनों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया, जिसके आप एक अंग हैं, अपनी आशाओं को साझा करती है और आपकी कठिनाइयों में आपको सहारा देती है। वह पवित्र आत्मा की एक नई कृपाओं के साथ प्रार्थना करती हुई आपका साथ देती है, ताकि जो लोग विश्वास करते हैं उनके उद्धार के लिए ईश्वर की शक्ति के रूप में सुसमाचार की रोशनी और सुंदरता आप में चमक सके। संघाई के राष्ट्रीय तीर्थालय में कुंवारी माता को शेषन की माता मरियम के नाम से सम्मानित किया जाता है। 2007 में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने चीन के कैथोलिकों को पत्र लिखा और चीन में कलीसिया के लिए प्रार्थना का दिन घोषित किया, जो हर साल 24 मई को मनाया जाता है। इस अवसर पर संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने माता मरियम को समर्पित एक प्रार्थना लिखी थी, जिसमें उन्होंने माता मरियम को ईश्वर के लोगों को सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु मार्गदर्शन करने को कहा, ताकि सभी हर परिस्थिति में सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का जीवन बिता सकें। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।